SBS हिंदी सेवा के सभी सुनने वालों को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। आइए सुनते हैं भारत के समाचार। पिछले 9 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने 9 एनकाउंटरों में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडरों समेत 13 दहशतगर्दों को मारने का दावा किया है, लेकिन इसके बावजूद वहां के बिगड़ते हालात काबू में आते नहीं दिख रहे हैं। शनिवार और रविवार लगातार 2 दिन आतंकवादियों ने घाटी में 4 प्रवासी मजदूरों की कायरतापूर्ण ढंग से गोली मारकर हत्या कर दी। अक्टूबर में अब तक कुल 5 प्रवासी मजदूरों को आतंकवादी अपना निशाना बना चुके हैं। शनिवार को आतंकियों ने बिहार से आए गोलगप्पे बेचने वाले श्री अरविंद कुमार साह और सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आए एक बढ़ई श्री सगीर अहमद की हत्या कर दी। रविवार को आतंकियों ने 3 और बिहार से आए प्रवासी मजदूरों को अपना निशाना बनाया, जिसमें श्री राजा ऋषिदेव और श्री जोगिंदर ऋषिदेव की मौत हो गई। श्री अहमद की शोकाकुल बहन ने अपने भाई के हत्यारों को सजा देने की मांग की।
घर से फोन आया कि उनके गोली लगी, हमें इंसाफ चाहिए।
किसने गोली लगाई?
आतंकवाद।
क्या चाहते हो?
हमें इंसाफ चाहिए, मुआवजा भी चाहिए, कोई सहारा नहीं। हमारा भाई एक अकेला है, हम 4 बहन है बस।
पिछले 12 दिनों के दौरान कश्मीर में 11 आम लोगों की हत्या हो चुकी है। इन घटनाओं की घाटी के नेताओं ने कड़ी निंदा की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने घटनाक्रम पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इन घटनाओं से लोगों का 1990 की तरह पलायन हो सकता है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा।
We still haven't been able to rectify what happened in the early 90s with the exodus of such a large number of Kashmiri Pandits. The last thing we want is to add to those numbers. It's not surprising that people are thinking of leaving, and I mean, all of us in the valley, we need to do whatever we can to try and stem this.
रविवार को आवाम की आवाज रेडियो कार्यक्रम पर बोलते हुए जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों को ढूंढ निकाला जाएगा और उनसे निर्दोष नागरिकों की बही खून की हर एक बूंद का बदला लिया जाएगा। जम्मू के पुंछ सेक्टर में मेंढर के नारखास जंगल में सेना और पाकिस्तान से आए आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। इस भीषण एनकाउंटर में 10 अक्टूबर से अब तक भारत के 9 सैनिक शहीद हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने घटनाओं का संज्ञान लेते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी है। केरल में अप्रत्याशित भारी बारिश के चलते न केवल सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, बल्कि बाढ़ में 24 लोगों के मारे जाने की दुखद खबर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से बात कर मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की और राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। राज्य में NDRF की 11 टीमें, सेना और डिफेंस सर्विसेज कोर की 2-2 टीमें और जल सेना का INS गरुड़ पर तैनात एक हेलीकॉप्टर बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। निहंग सिखों द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में लखबीर सिंह नामक एक दलित सिख की सिंघू बॉर्डर पर हत्या के आरोप में हरियाणा पुलिस ने 3 निहंगों को हिरासत में लिया है। एक स्थानीय अदालत ने उन्हें 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। संयुक्त किसान मोर्चे ने अपने को घटना से अलग करते हुए साजिश की तरफ इशारा किया है। इस बारे में संयुक्त किसान मोर्चे के अग्रणी नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बात की।
और ये जो घटना हुई है, ये एक धार्मिक घटना है, इसका किसानी आंदोलन से संबंध नहीं है, और ये जो भी षड्यंत्र था ये पूर्ण रूप से सरकारों की देन है। वही हमारी इंटेलिजेंस रहती है, क्या उसको नहीं जानकारी थी? तो इसका मतलब ये लगता है कि सबकी जानकारी में ये था और ये करवाया हुआ एक तरह से।
अपने तय किए गए कार्यक्रम पर चलते हुए आज किसान देश भर में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रेल रोको अभियान करेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि के चलते लोगों पर महंगाई की मार का असर साफ दिखने लगा है। 13 दिनों में 11 बार कीमतों में वृद्धि के बाद रविवार को पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 105.84 रुपये और मुंबई में 111.77 रुपये पहुँच गई। चूँकि ईंधन की कीमतों का असर सीधे अन्य चीज़ों पर पड़ता है, इसलिए सब्जियों जैसी रोज़मर्रा की चीज़ें भी महंगी होने लगी हैं। इस विषय में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार को घेरा है।
कीमतें अनाप शनाप बढ़ती जा रही हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है कि केंद्र सरकार ने जितने टैक्स लगा रखे हैं वो टैक्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। कोरोना की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के ऊपर करों के अंदर भारी कमी करे ताकि पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सके।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के केवल 3 महीने शेष बचे हैं और वहां सियासी सरगर्मियां और जबानी जंग तेज होने लगी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने लोगों को पिछले सरकारों के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी।
वे कभी भी उनका दृष्टिकोण परिवार से ज्यादा बढ़कर के नहीं, वो अपने स्वयं के परिवार का, स्वयं और स्वयं के परिवार के विकास के अलावा समाज और राष्ट्र के बारे में उनकी चिंता थी ही नहीं। और यही कारण रहा कि प्रदेश पिछड़ता गया, बदहाली होती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, दंगों की आग में प्रदेश को झोंक दिया गया।
मगर विपक्षी दलों के पास किसान आंदोलन के अलावा लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी हैं जो उन्हें मोदी और योगी सरकार पर लगातार हमला करने का मौका दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा पर हमला बोला है।
महंगाई को लेकर के ये दावा किया गया था कि सत्ता में आते ही महंगाई को रोकने का और नियंत्रण करने का काम किया जाएगा, लेकिन जब आज हम महंगाई को देख रहे हैं, सुबह की चाय से लेकर के और शाम के खाने तक का अगर हिसाब किताब लगाएंगे और जितनी भी चीज़ें आसपास दिखाई दे रही हैं, आज उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। इन्होंने हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया है। ये नारों में, विज्ञापन में तो अच्छे लगते हैं और आपने ठीक कहा, ये नौकरियां केवल प्रचार के लिए हैं। सच्चाई में नौकरी नहीं मिली। न केवल उत्तर प्रदेश ने धोखा दिया यहाँ के नौजवानों को, बल्कि दिल्ली की सरकार ने भी धोखा दिया।
5 राज्यों के चुनावों से पहले कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर पार्टी में उठ रहे कई मसलों को सुलझाने की कोशिश की है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने साफ किया कि वे पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बल्कि पूर्णकालिक और हैंड्स ऑन अध्यक्ष हैं। इसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, जिन्हें ग्रुप ऑफ 23 भी कहा जाता है, को दी गई चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा इस बैठक में कांग्रेस ने 2022 के अंत तक पार्टी में आंतरिक चुनाव कराने का भी फैसला लिया, जिसमें नए अध्यक्ष का भी चुनाव किया जाएगा। बैठक के बाद कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस को संबोधित किया।
कांग्रेस कार्य समिति के हर साथी ने, और हर साथी से मतलब है हर साथी, खुद बोलकर ये कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी में उनका गहन विश्वास है। उनके नेतृत्व, उनकी कार्यकुशलता और बीमार होकर भी जो किसी स्वच्छ व्यक्ति से ज्यादा 24 घंटे काम करती हैं, उसमें कांग्रेस कार्य समिति के हर सदस्य ने उनके नेतृत्व में विश्वास जताया। और ये जो कभी अंतरिम अध्यक्ष कभी पूर्णकालिक अध्यक्ष की खबरें थी, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने ही उसे सिरे से खारिज कर दिया और अनुरोध किया कि अगले चुनाव तक कांग्रेस अध्यक्षा जी हमारा नेतृत्व करें।
कांग्रेस की प्रेस वार्ता होने के फौरन बाद ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस वार्ता बुलाकर कांग्रेस पर तंज कसा।
And I am quoting from this statement and press release, which says, I am, if you will allow me to say so, a full-time and hands-on Congress president. मतलब सोनिया गांधी जी अभी तक तो ये ज्ञात था कि वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, और G23 ये बात हम नहीं कहते, जो बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आज उस जहाज की तरह है जिसको ये नहीं पता कि उसका कैप्टन कौन है, उसकी दिशा क्या है। अगर फुल टाइम है तो ये बात तो उन्हें, जो कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता हैं, उनको बतानी चाहिए।
और आइए अब सुनते हैं खेल समाचार। भारत ने दक्षिणी एशिया में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए नेपाल को 3-0 से हराकर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप पर कब्जा कर लिया है। भारतीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने खेल के 49वें मिनट में गोल दागकर भारत को बढ़त दिलाने के साथ लियोनेल मेसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मैचों में किए गए 80 गोलों की बराबरी की। अन्य 2 गोल सुरेश सिंह और अब्दुल समद ने किए। भारत की SAFF चैंपियनशिप में ये 12वीं जीत थी। आज के समाचारों को यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। SBS हिंदी सेवा से मनन कुमार का आप सबको नमस्कार।